خوش آمدید، آپ جائیے جناب میخائیل۔
اگر آپ چاہیں تو یہیں بیٹھ کر حساب کر لوں۔
نہیں، آپ جائیے، آپ تشریف لائیں۔
ہم سے کوئی کام ہے جناب یساکار؟
ہم درس میں تھے، خبر ملی کہ ہم سے کوئی کام ہے، فوراً آ گئے۔
کئی سالوں سے عبادت گاہ میں آپ کی پیش رفتی کو دیکھ رہا ہوں، اور ہر لمحے آپ کی فکر لگی رہتی ہے۔
کوئی خاص بات پیش آ گئی ہے؟
نہیں، صرف آپ سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ عبادت گاہ میں کوئی مشکل ہے؟
نہیں، کیسی مشکل؟
کیونکہ آپ کافی عرصے سے اپنی ماہانہ تنخواہ لینے میرے پاس نہیں آئے۔
اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
کیسے ضرورت پیش نہیں آئی؟ یہ وجہ غیر معقول ہے داؤد۔ ہم سب زندگی گزارنے کے لیے در آمد کے محتاج ہیں۔ ہم تو اس دنیا سے زیادہ نہیں چاہتے، صرف اتنا کہ سچے دل سے خدا کی خدمت کر سکے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ذرا میری طرف دیکھو، کچھ سال پہلے کے مقابلے کیا کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ کیوں، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اب تو میں موت کے کافی قریب ہو گیا ہوں۔ یہ تو تقدیر الہی ہے جو ہم سب کے لیے لکھی گئی ہے۔ دیکھو کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے آئندہ کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ بڑھاپے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ انسان اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے مال کا محتاج ہے۔
صحیح، کوئی بھی غیرت مند انسان ہاتھ پھیلانے کی ذلت کو پسند نہیں کرتا۔ جناب ایساکار، آپ نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے۔
تو آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ جوانی میں ہی بڑھاپے کی فکر میں رہو؟ میں نے حساب کیا کہ ان چند مہینوں میں یہویاقین آپ کو 3 تھیلیاں اور میرے عزیز داؤد آپ کو سکے کی 2 تھیلیاں ملنی چاہیے۔ اور دیکھیے، یہ سکے اس نفع کا حصہ ہے جو غیر یہود سے حاصل ہوا ہے۔ اٹھا لیجئے، اٹھا لیجئے۔
لیکن جناب زکریہ کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں، جبکہ شہر کے لوگ فقر و بیچارگی میں زندگی گزار رہے ہوں، نفع کا حصہ لینا خدا کے بندوں اور عبادت گاہ کے کاہنوں کے شان کے خلاف ہے۔ جناب اساکار،
دیکھیے، عبادت گاہ کے کاہنوں کی شان موسیٰ کے دین اور خدا کی رضا پر مبنی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا ہماری شریعت میں قوم یہود، جو خدا کی برگزیدہ قوم ہے، کو قوی کرنے کے لیے ہر وسیلے اور ہر ممکن روش سے مقصد تک پہنچنا کیا جائز نہیں ہے؟ کیا اس کرۂ زمین پر تسلط ہمارا اصلی ہدف نہیں ہے؟ بتائیے۔
ہر ممکن وسیلے سے جناب ایساکار، خدا کے بندوں کو خرید کر بھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی جان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہیے، نہ کہ جسموں کو۔
تمہارے سینے میں جوانی موجے مار رہی ہے، لیکن تمہاری گفتگو میں زکریہ کی گفتگو کی بو سونگ رہا ہوں میں۔
جناب ایساکار، بزرگی کے لحاظ سے آپ کا احترام مجھ پر لازم ہے، لیکن برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی جناب زکریہ کی بے حرمتی کرے۔ پیغمبروں کی سنت یہ نہیں کہ انہیں صدقہ دیا جائے تاکہ وہ خاموش ہو کر قدرت مندوں کے سامنے جھک جائیں اور دین کی تبلیغ اور اس کے آئین سے دستبردار ہو جائیں۔ اب جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔
گمان کرنا چاہیے تھا۔ جانتا ہوں آپ منطقی بحث اور استدلال کو برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ صبر بھی نہیں کر سکتے تاکہ میری باتوں کو سن سکو۔ فکر کرو، پھر اس کے بعد قبول کرو۔ کیا یہ پیغمبروں کے چاہنے والوں کی سنت نہیں کہ مخالفین کے ساتھ مباحثہ کریں اور ان کو گمراہی سے باہر نکالیں؟ پھر آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ میں آمادہ ہوں۔
ہم تو ہمیشہ آپ کی باتیں سننے کے لیے آمادہ ہیں۔
کس سے گفتگو؟ کبھی کبھی بحث اور مباحثے انسان کو گمراہی کے سمت لے جاتے ہیں۔
یہویاقین
بدعت؟ کون سی بدعت؟
بتاتا ہوں، तौरात को अपने कलम से लिखा है और खुदा के कलाम को अपने फायदे के लिए तब्दील कर दिया है। औरतों को हकीर समझा और दाश्ताओं की तरह खरीदो फरोख्त किया, फसाद और फाशा के मुकाबले सकूत इख्तियार किया, लेकिन पैगंबर और उनके मौजजे के मुकाबले खड़े हो गए और इनकार किया। मगर ऐसा नहीं कि ये सब चोरी, कत्ल, जिनायत, खून खराबा, गरीबी और इस सरजमीन पर लोगों की सरगर्दानी तुम जैसे लोगों के खतरनाक तफक्कुर और दीन में की हुई तहरीफ का नतीजा है। याद रखो कि मुंजी बशरियत तुम्हारे इन अमाल का जवाब देगा। खुदाया मसीह को हमारे पास भेज। चलो दाऊद।
कबूल नहीं किया?
नहीं।
अगर इस माल का दसवां हिस्सा भी किसी काहिन को पेश किया होता तो आपके पैरों में गिर गए होते। ना अहल,
उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह जलसा मेरे लिए बहुत गिरा साबित हुआ, लेकिन यह यकीन के लिए इससे गिरा तर साबित होगा।
आखिर इस मुख्तसर सी मुद्दत में तुम्हारा पेट 6 महीने की औरतों की मानिंद बाहर कैसे आ गया?
मुझे भी ताज्जुब हुआ, लेकिन जनाबे जकरिया का कहना है कि यह खुदा का मौजीजा है।
काफी अरसे से आपके दीदार को नहीं आए थे, पड़ोसी होने के नाते हमें माफ करना।
इसे मेरी बेटी ने पकाया है, गुजारिश है इसे कबूल कर लें।
ये कुछ नजराने हैं जिन्हें इबादत गाह के लिए रखा था।
आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं जानती कि जनाबे जकरिया इन तोहफों को कबूल करेंगे या नहीं। आप जानती है वो कितने सख्त है।
आप इसरार कीजिएगा, शायद कबूल कर लें।
आप सबका यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। आपके इस मोहब्बत का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ?
ये क्या बात हुई, जनाबे जकरिया खुदा के पैगंबर हैं। ये हम सब के लिए बाईस इफ्तिखार है कि ये मौजिजा हमारे दरमियान रोनुमा हुआ है। क्या हुआ?
अलीजाबाद
हिल रहा है, हिल रहा है। बच्चा मेरे पेट में हिल रहा है, गोया किसी की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। कौन है? मरियम,
खाला जान,
मरियम, 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 बिलाखिर तुम आ गई। यकीन नहीं हो रहा है, खुदाया यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारे दीदार की कितनी आरजू थी, मेरी अजीज और पाकीजा बेटी मरियम। रुको ताकि तुम्हें देखूं, तुम कितनी बड़ी और नूरानी हो गई हो।
खाला जान, आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है।
ये मरियम है।
तो यही मरियम है।
मरियम,
तुम्हें गए काफी अरसा हो गया, लेकिन हमेशा तुम्हें देखने की तमन्ना रहती थी।
तो यही मरियम है।
हाँ, मरियम मुकद्दस कहते हैं, इसे ही साहिब करामत कहते हैं। इसके हाथों में शिफा है, इसकी दुआ में काफी असर है।
हमें भी बरकत दो मरियम, हमारे लिए दुआ करो ताकि हम इस बरज़क से रिहाई पाएं।
मरियम,
मरियम सारी से आपकी मुंतज़िर है, हमारे लिए दुआ की ज़ियारत कर सकें।
दुरूद हो आप पर।
ए पाकीज़ा मरियम,
हम आपके मुंतज़िर
हैं। 16 साल लड़की के सामने जान उटेक दिए हैं,
सिर्फ तुम ही हमारी उम्मीद हो ए मरियम मुकद्दस।
ए मरियम, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ।
तुमसे एक सवाल है ए मरियम, क्या मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी को खुदा की इबादत में वक्फ कर सकती हूँ?
जिंदगी बरकत इलाही है और खुदा की बारगाह में उसका शुक्र बजा लाना चाहिए, लेकिन मैं खुदावंद ने मेरे मुकद्दर को इसी तरह मुकर्रर किया था।
बाखुदा समझ में आता है कि ये मौजिज़ा कैसे हो सकता है।
क्या हकीकतन ज़करिया साहिब फर्जंद होने वाले हैं?
वो सबको धोखा दे रहा है। कैसे मुमकिन है कि एक बूढ़ा इस उम्र में साहिब फर्जंद हो?
दर हकीकत ये एक मौजिज़ा है।
मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ।
वो खुद सबसे बड़ा दीवाना है।
उनकी नसीहतों को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। इस तरह खुदा वंदे आलम के सामने सर बुलंद हो जाएंगे।
सलाम जनाबे अरबाम और सलाम जनाबे नतान। हमारे दरमियान खुश आमदीद। ए ज़करिया के रिश्तेदारों, क्या बेहतर नहीं होगा कि आप भी उनसे दुश्मनी ना रखें?
हमें ज़करिया से कोई अदावत नहीं। औरतों से कह दिया है कि अलीसबाद से मिलने जाएं और उसका ख्याल रखें और उसे तन्हा ना छोड़ें।
नतान, याद है तुम्हें, याद है किस तरह इबादतगाह के काहिनों के दरमियान जनाब ज़करिया की बेइज्जती की थी और बुरा भला कहा था? आप क्या कहते हो? देख रहे हो उनकी हकानियत साबित हो गई है? देख रहे हो ना, तुमने जिस तरह सबके सामने उनकी बेइज्जती की थी, खुदावंद ने इस तरह इज्जत अता की कि यहूदी मजहब की तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी।
ज़करिया के अलावा और कोई कुदसुल अक़दस में नहीं था, और जो आवाज उसने सुनी थी किसी दूसरे ने नहीं सुनी। आखिर कैसे पता चले कि 3 दिन की खामोशी कहीं उसके शैतानी नफ्स की इल्क़ाआत की तासीर तो नहीं थी?
कैसे जाने ये खुदा की तरफ से है? किसने बोलने की कुव्वत उनसे ले ली? किसने?
जनाबे नातान, ज़करिया नबी के पुराने शागिर्द, क्या तुम भूल गए? भूल गए कि खुदा के अलावा कोई पैगंबर के नफ्स पर हावी नहीं हो सकता?
जानते हो, शैतान को पैगंबरों पर कोई इख्तियार नहीं है, वरना वो खुदा के रसूल ना होते। सिर्फ यहोवा है जो पैगंबर की जबान को खामोश रखने की कुव्वत रखता है।
मैं क्या कहूँ? मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
पैगंबर, पैगंबर, आप काहिनों को क्या हो गया है? ज़करिया एक बेशरम और झूठे के अलावा कुछ नहीं। मैं उस परेबकार और झूठे बूढ़े की बातों पर यकीन नहीं करता, नहीं करता यकीन।
जनाब, आप क्या कर रहे हो?
जसारत कर रहे हो बदतमीज?
पीछे हटो, पीछे हटो यार, यकीन
फरेबकार तुम हो। अगर दोबारा ऐसी बातें तुम्हारी जबान पर आई तो जबान हलक से खींच लूंगा। किसी को भी खुदा के पैगंबर की बेइज्जती करने का हक नहीं, न तुम्हें न किसी और को।
अच्छी तरह सुनो यहोयाकीन, इस हरकत के बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अपनी जान, समझे?
जब तक मैं जिंदा हूं, इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी जनाब ज़करिया के खिलाफ बात करे। ये हाथ और ये बाजू उसके खिलाफ है जो उनकी एहानत करता है, या उसके जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है, या फिर उसके जो उनकी नाफरमानी करता
चलो,
है।
चलो यहां से, चलो अब उसको छोड़ दो। उन लोगों से टकराना नहीं चाहिए।
खुदाया, परवरदिगार, कौन सच बोल रहा है और कौन गुमराही की राहों पर चल रहा है? मुझे राह हक व हकीकत की शनाख्त करा दे, जन्नत या जहन्नम।
बाबा सलाम।
मेरे बेटे आंतिपातर, मेरी बादशाहत के तख्तो ताज के वारिस, क्यों तुम्हें जंजीरों में जकड़ा देख रहा हूं?
मुझे आपके खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।
इस बात में सच्चाई नहीं है। तुम बेगुनाह व पाक हो और अपने वालिद से मोहब्बत करते हो।
नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। यरूशलम में हर जगह सिर्फ मौजीजे की बातें हैं। चाहता था इस मौके से फायदा उठाकर आपके खिलाफ कयाम बर्पा करूं और सल्तनत को अपने हाथ में ले लूं। मुझसे सिर्फ ये गलती हुई कि आपके बाज लोगों पर एतबार किया, लेकिन उन लोगों ने आपको मुझ पर तरजीह दी और उसी वजह से इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं।
ये पहली मर्तबा देख रहा हूं कि खाइन इतनी सराहत से एतराफ कर रहा है।
ये खयानत नहीं थी। क्या यह बादशाहों की रस्म नहीं है कि हर एक अपने बाप भाई और कराबतदारों पर गलबा पाकर तख्ते सल्तनत पर बैठ जाता है? क्या आपने खुद आंटी गुनूस को मौत के घाट नहीं उतारा? अपनी अजीज जौजा को थोड़ी सी सुए जन के बिना पर बेरहमाना कत्ल नहीं किया? और अपनी बहन डेबोरा को जल्लाद के सुपुर्द नहीं किया? और बहुत से कराबतदारों को निस्तो नाबूद नहीं किया? ठीक है, मैंने भी तुम्हारी रविश अपनाकर अपनी किस्मत को आजमाया। अगर यहोवा मेरे साथ होता तो इस वक्त आप मेरे कैदी होते और ये लोग मेरी बातों को मानते। मुझे माफ करो कि मैं यूं हंस रहा हूं। मुझे याद आ गया कि इन्हीं हाथों से तख्त सल्तनत को हासिल होना था।
खामोश रहो वरना हुक्म दूंगा कि इसी जुर्म में
कि मुझे इस जिंदगी से निजात दे। बाबा आपसे गुजारिश करता हूं, इस काम में देर ना करें, मुझे जल्द राहत दे दे ताकि इस जिल्लत से रिहाई मिल जाए।
बेटे को मारना आसान है या बाप का कत्ल, एक ऐसा मसला है कि जिसका जवाब मुझे हरगिज नहीं मिल सकता। कहां हो ऐ मेरी बावफा जौजा, मेरी आम, मेरे वालिद, रिश्तेदारों, बुजुर्गों,
क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे हो?
क्यों कोई भी इन बदबख्तियों पर जो रिश्तेदारों के हाथों मिली है हमदर्दी नहीं कर रहा है? उस बूढ़े नज्जार के चेहरे को नहीं भूलूंगा जिसने हम सबको नसीहत की थी। शायद अगर उससे दूरी इख्तियार की होती या उसकी बातों को न सुना होता तो ये मनहूस हवादिस मेरे दोष पर बोझ न होते।
सलाम जनाबे ज़करिया।
जनाबे ज़करिया आ गए।
खुदा के पैगंबर
जनाबे ज़करिया आ गए।
लोग जमा हुए हैं ताकि आप उनके लिए आवाज करें।
हम सब अपने माजी पर शर्मिंदा हैं, हमारी रहबरी कीजिए।
ऐ पाकीज़ा ज़करिया, इस मौजीज़े ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें अपने से दूर ना करें, हमें नसीहत कीजिए।
हाँ हाँ, हम परेशान हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमारी रहनुमाई करिए, हमारी रहनुमाई करिए।
ऐ अजीजों आप पर दरूद हो, ऐ पड़ोसियों आप पर दरूद हो। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो चीज गुम हो जाने पर तलाश कर लेते हैं लेकिन खुद के गुम हो जाने पर खुद की तलाश तक नहीं कर पाते। दाऊद पर वही नाजिल हुई है दाऊद, घर को पाक कर लो ताकि खुदावंद वहां तशरीफ लाए। कहा बारे इलाहा, वो कौन सा घर है जो तेरी अजमत और जलाल के मुनासिब हो? कहा वो एक मोमिन का दिल है। कहा किस तरह पाक करें? कहा उसे जलाओ ताकि हर वो चीज जो मुझसे निस्बत नहीं रखती जल जाए। उसके बाद अगर कोई हमें तलाश करता हुआ सरगर्दा नजर आए तो वहां इशारा करो कि हमारा कुत्स वहां है।
मौजजा नहीं, वो औरत जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बांझ है, एक बूढ़े मर्द से हामिला हो गई। जलीला शहर के लोग हम पर हंस रहे हैं
कि हम जकरिया और अलीसाबाद के रिश्तेदार होने के बावजूद सबसे बदतर हैं।
जनाब यसाका, कुछ कहते क्यों नहीं? देख रहे हैं किस तरह लोग अवाम को हमारे खिलाफ वर्गला रहे हैं और मौजिजा होने के बहाने से हमारे घर की औरतों को भी अपनी बातों से असरअंदाज कर रहे हैं। सब्र करो ताकि घर पहुंच जाए, उस वक्त मैं जानूंगा और तुम कि तुम्हें कैसा मौजिजा दिखाता हूं।
अस्तर, अली सवाद कितने महीने से हामिला है?
कुछ 5-6 महीने से है।
अजब, मौजिजे का दावा किए हुए 2 महीने से ज्यादा नहीं गुजरे।
काश खुदा मौत दे देता और इस तशवीश और उलझन को मुझसे ले लेता। जकरिया कह रहे हैं कि खुदा हम सबका इम्तहान ले रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम गुनाहगार काहिन इस इम्तहान में शर्मनाक तरीके से नाकाम हो गए। अब तक तो हमने मसीह की जगह मरियम के पैदा होने पर इमरान की नबूवत के दावों को झुटलाया है। क्या इस मोजीजे से खुदावंद हमें अपनी जगह दिखा रहा है? एक मोजीजा, ऐसा मोजीजा जो साबित करता है कि वही खुदा के नबी है, एक पैगंबर जिनकी पैरवी करना चाहिए और उनके फरमान को सुनकर अमल करना चाहिए।
कहो कि वो खुदा के पैगंबर नहीं है, कहो कि वो बूढ़ा और मजनून है, मुझसे कहो कि ये एक झूठ और बड़ा फरेब है। वाह हो मुझ पर अगर वो खुदा का पैगंबर है, ऐसी सूरत में मैं जहन्नुम की आग में जलूंगा।
खामोश, इतना काफी है नातान, खामोश रहो। खुदा की कसम अगर खामोश नहीं हुए तो खुद अपने हाथों से मैं खामोश कर दूंगा। मैंने कहा था ना जनाबे यसाका, कहा था ना कि आपकी ये खामोशी दूसरों की गुमराही का बाइस बनेगी। इन बदबख्तों को अगर आजाद कर दें तो हर रोज 1000 मर्तबा अपना रंग बदलेंगे और हर रोज ईमान से कुफ्र की तरफ फिरेंगे।
ये सब इसलिए है कि सोचते हैं खुदावंद ताला हर लम्हे जमीन पर मोजिजा खल्क करता है। अफसोस, किसने अपनी आंखों से देखा है कि मूसा और सलेमान के जमाने के बाद खुदा की तरफ से जमीन पर मुजिजा नाजिल हुआ है? खुदा ने यहूदी कौम का, जो सबसे बेहतरीन कौम है, इंतखाब किया है ताकि दुनिया को बनाए और इंसानों की तरबियत करे। तो यहूदी कौम को चाहिए कि सभी अदियान के पैरवान और कौमों पर तसल्लुत हासिल करें ताकि हद्फ खिलकत मुकम्मल हो जाए। खुदा को दूसरे किसी मोजिजे की जरूरत नहीं है।
ये बातें मुझे और भी ज्यादा उलझा रही हैं। आग को बुझाइए जनाबे यसाकार, जो मेरी रिदा के दामन में लगी है और अन करीब मेरे जिस्म और रूह को भी गुमराही की शर्मिंदगी में चला देगी।
आइए कुछ लम्हे खुद को जकरिया की जगह पर फर्ज करें। एक बूढ़ा मर्द जो चाहता है कि मकामे नबूवत और पैगंबरी पर पहुंचाए। पिछले कई सालों से उसने बहुत से मंसूबे बनाए लेकिन कामयाब नहीं हुए। یہاں تک کہ اتفاقاً اس کی زوجہ بڑھاپے میں حاملہ ہو جاتی ہے اور وہ ابراہیم اور سارا کے ماجرے کو بیان کرتا ہے۔ انہیں بھی بچے نہیں ہوتے تھے اور خداوند نے انہیں اسحاق عطا کیا۔ بس ہمارے زکریہ نے اپنی زوجہ کے حمل کو کچھ ہی مہینے پوشیدہ رکھا اور پھر مراسم کے دن قدس سے باہر آ کر خاموشی اختیار کی اور پھر سب کو اشارے سے سمجھایا کہ کوئی غیبی آواز سنی ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ خداوند نے اس کی زبان بند کر دی۔ آہستہ آہستہ علی سبات کا پیٹ باہر آیا اور اس کی غیبی آواز کا معجزہ سب کی زبانوں پر آتا ہے بڑی آسانی سے۔ ہمارا یہ بوڑھا چاہ طلب اور مکار زکریہ زوجہ کے حمل کی بنا پر ایک بڑے پیغمبر میں تبدیل ہو گیا ہے۔
تو ایسا تھا؟ دیکھا دیکھا، کہتی تھی نا اس کام میں کوئی راز ہے۔ خدا کا شکر کہ اس کا جھوٹ آشکار ہو گیا۔
وائے میرے خدا، جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں الجھن کے سیاہ بادل ہٹ جاتے ہیں۔ اسے رسوا کر دیا جناب اساکار، رسوا۔ معجزہ،
اب مجھے کیا معلوم، لوگوں کی غلطی تھی جو کہہ رہے تھے۔
خیال رہے ہر خبر جو عوام تم تک پہنچائے، اس جسارت اور گستاخی سے اپنے شوہر اور جناب اساکار کے سامنے بیان نہیں کرنا۔
مجھے معاف کیجئے جناب اساکار، میں ایک احمق اور دیوانی عورت ہوں۔
تمہاری سادگی اور صداقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہیں ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ میری زوجہ کے عقل مند بھائی جناب نتان نے اتنی جلدی گمراہوں کے لباس کو کیسے پہن لیا؟
اشتباہ کیا جناب، اشتباہ کیا۔ یہ نادان اور تنگ فکر بندے کو خدا کے لیے معاف کریں کہ کتنی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے اور مسائل کو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس بار بھی آپ نے مجھے نجات دی، آج کے بعد میری روح آپ کے اختیار میں ہے اور جو بھی حکم فرمائے وہی کروں گا، حتیٰ اگر زکریہ جیسے جھوٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا ہو۔
جاؤ اور خداوند کی بارگاہ میں توبہ کرو نتان، تمہیں لوگوں کو اس بڑے جھوٹ سے آگاہ کرنا چاہیے۔
سلام میرے عزیز یوسف۔
سلام، خوش آمدید
استاد، تشریف رکھتے ہیں؟
جی ہاں بالکل۔
سلام یوسف۔
سلام۔
سلام جناب زکریہ۔
سلام۔
سلام میرے عزیزوں۔
اے پاک زکریہ، اے خدا کے پیغمبر، ایک اہم کام سے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں سرگردانی اور گمراہی سے نجات دیں۔ آپ کی نصیحت کے محتاج ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں۔
پوچھئے۔ زمانہ بہت خراب ہے، ہر ایک کاہن مختلف عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں، اکثر مومنین حیران ہیں۔ دشمنان خدا نے دولت اور زور کی طاقت پر سب کو اپنی طرف کر لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی نظریات کو آپ کے خلاف کر دیں۔ ہم آئے ہیں آپ کے جانب تاکہ اپنے دین کو آپ سے بیان کریں، اور اگر آپ کی تائید حاصل ہو تو اسی پر ثابت رہیں۔
جو آپ نے کہا وہی عین دین ہے، اور خداوند اس پر راضی ہے، اور اسی پر ثابت قدم رہیں۔
اے خدا کے نبی، ہم آپ کے پیچھے محکم اور مضبوط کھڑے ہوئے ہیں۔
زمانہ بہت حوادث سے بھرا ہوا ہے، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔
بس بس آپ دعا کریں،
خداوند آپ کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھے۔
Thank you.
जा रही हो? थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। खाला जान, मेरी माँ के बारे में बताइए।
तुम्हारी माँ? जिस दिन से जनाब ज़करिया तुम्हें इबादतगाह ले गए, हन्ना हमेशा एक गोशे में बैठकर दरवाजे को देखती रहती। बहुत इसरार करके उसे आंगन में ले आती और खरीदारी के बहाने बाहर ले जाती। उस दौरान किसी को न देखा, जैसे उसके लिए दुनिया में कोई भी वजूद नहीं रखता हो। जब मुझसे बात करती थी या कभी मुस्कुराती भी थी, तो आंखों में तुम्हारी दूरी का हम मौजे मारता था। मैं उससे अक्सर पूछती कि वो तुम्हें मिलने क्यों नहीं जाती। जाओ और अपनी प्यारी बेटी को, जिसे तुम जान से ज्यादा चाहती हो, उसे देख आओ। वो जवाब में कहती, मैंने उसे खुदा के लिए नजर कर दिया है, कैसे हो सकता है कि उसके वजूद का एक हिस्सा अपने लिए जाऊं। उसे राजी किया। एक मर्तबा मख्फी तौर पर तुम्हें देखने के लिए इबादत गाह आई और एक लम्हे के लिए तुम्हें दूर से देखा। ये लो, इस गर्दनबंद को तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें दे दूं। ये मेरी माँ की तन्हा यादगार है।
सलाम हो आप पर या मरियम। सलाम हो।
सलाम।
सलाम।
सलाम मरियम। सलाम मरियम।
सलाम मरियम।
ऐ मरियम, क्या हमारे साथ दुआ करोगी? खुदा आप सबकी हिफाजत करे। खाला जान, खुदा हाफिज।
मेरा नाम भी मरियम है, मेरी माँ भी नहीं है, वालिद भी इंतकाल कर चुके हैं।
आओ, ये गर्दनबंद मेरे सबसे अजीज से मुझे मिला है। खुदा हम सब यतीमों का मुहाफिज है, गमगिन न रहो।
शुक्रिया मरियम।
शुक्रिया।
हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने हमारे लिए दुआ की,
हमें कुछ आराम मिला। शुक्रिया।
सलाम मरियम, मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया और अब जनाबे ज़करिया का शागिर्द हूँ।
सलाम मरियम।
यकीन करना मुश्किल है, वो इसी घर और मोहल्ले में बड़ी हुई हैं।
तुम्हें याद है जब वो 6 साल की थी?
हाँ, उसी वक्त से पता था कि वो एक खिदमत गुजार है।
उसी वक्त से पता था कि वो एक गिदिसा है।
हाँ।
खुदा का शुक्र, कुछ आराम मिल गया।
क्यों?
सलाम।
सलाम मरियम।
सलाम।
सलाम मरियम। सलाम।
सलामत रहो।
जरा रुको, आहिस्ता चलो।
खुदा का शुक्र है इन अजीम नेमतों के लिए।
जानता था यही उसके वापस जाने का रास्ता है। वो आ रही है। देखो सराफीना, क्यों ना इस काम को भूल जाएं? सराफीना, वैसे भी मुझे यकीन नहीं कि वो कर सकती है।
गुजारिश करती हूँ प्रिक्लिस, आपने मुझसे वादा किया था मेरी बेटी की खातिर।
ठीक है, रुक जाओ लड़की, मुझे तुमसे काम है। तुम मरियम हो? मरियम इमरान की बेटी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं प्रिक्लिस रूमी फौज का आला हुक्मरान यहां पर मुकीम हूं। मेरा नाम तो जरूर सुना होगा। वो मेरी जौजा है सराफीना। हमारा यहां आने का मकसद यह है कि लोगों की नजरों से दूर तुम्हें मिलें, और तुमसे एक दरख्वास्त है। अगर तुमने मेरी बेटी को शिफा दे दी तो मैं तुम्हें सिक्कों की 10 थैलियां दूंगा। 10 रूमी सिक्कों की थैलियां, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। 10 थैलियां मरियम, समझी?
प्रिक्लिस, आप खामोश रह सकते हैं? ये बात करने का कैसा तरीका है?
कितनी खूबसूरत बच्ची है। बदन कितना गर्म है।
जब से दुनिया में आई है बीमार है। रूम के तबीब भी कुछ ना कर सके। अब जो यहां आए हैं और जानने पहचानने वालों से दूर है, मेरी जिंदगी की तन्हा उम्मीद यही है। दिन ब दिन इसका मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। किस तरह कहूं अगर ये दुनिया से चली गई तो मुझ में जीने की ताकत नहीं रहेगी। ए मरियम, इमरान की बेटी, इसे शिफा दे दो।
सराफीना ने तुम्हारे बारे में सुना था और इसरार किया। हमें अब किसी से या किसी जगह से उम्मीद नहीं है, सिर्फ तुमसे, तुमसे मरियम। क्या तुम हमारी मदद करोगी?
मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझे अफसोस है।
मैंने कहा था ना सराफीना कि ये लोग हमें नजीस और बुत परस्त समझते हैं, खुद को खुदा के बरगुजीदा कौम समझते हैं, और उनकी नजर में दूसरों की कोई कीमत नहीं। ये लोग दूसरी कौमों के दर्द, रंज व गम की कोई परवाह नहीं करते। हत्ता हम रूमियों की, जिसने आधी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। कितनी बेहुदा दरख्वास्त है।
दरख्वास्त करती हूँ प्रिक्लिस, कुछ करो, तुमसे भीख मांग रही हूँ।
सुनो लड़की, अगर मेरी बेटी को ठीक कर दोगी तो जितना कहा उससे ज्यादा दूंगा। जो कुछ मेरे पास है तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ एक मर्तबा हम पर रहम करो, सिर्फ एक मर्तबा, एक गैर यहूदी घर आने के लिए।
देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी चीजें खुदावंद के इरादे पर मौकूफ है, जो दुनिया के तमाम लोगों का परवरदिगार है। हम सबके शिफा उसी के हाथ में है। मैं सिर्फ इस बच्ची के हक में दुआ कर सकती हूँ।
वो दुआ कर रही है, दुआ कर रही है।
हम सबकी शिफा
उसी के हाथ में है। खुदावंद तुम्हारा हामी रहे और तुम्हारी बच्ची को शिफा इनायत फरमाए। तुम्हारी जौजा और बच्ची से मोहब्बत तुम्हें नजात दिलाएगी।